देश भर में 3 दिन में 3,80,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 580 लोगों में प्रतिकूल असर देखने को मिला। इनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि दोनों मौतें वैक्सीन की वजह से नहीं हुई। 2 में से 1 मौत मुरादाबाद में हुई जबकि दूसरी मौत कर्नाटक के बेल्लारी में। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले सामने आए। 30 अप्रैल के बाद एक दिन में ये सबसे कम नए मामले हैं। 30 अप्रैल को सिर्फ 76 नए मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर केवल 0.32% रही जो अब तक की सबसे कम दर है। बर्ड फ्लू के संक्रमण और पिछले हफ्ते भर में 15 कौओं के मरने के बाद दिल्ली का लाल किला पर्यटकों के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान डटे हुए हैं। सोमवार को पुलिस अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की बात कही है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और वो 3 कृषि कानूनों को वापस लिए बिना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। वहीं आंदोलन के दौरान कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। सोमवार को महिला किसान दिवस के अवसर पर खाने के स्टॉल लगाए गए। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर गाजीपुर में भी किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पर रेसलिंग के बाद अब कबड्डी की प्रतियोगिता हुई। इसमें बड़ी तादाद में लड़कियों ने हिस्सा लिया। शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है और लगातार केंद्र और पंजाब सरकार पर हमलावर है। किसान आंदोलन का अकाली दल समर्थन कर रहा है। अकाली दल की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में कोर कमेटी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इनमें पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का सपोर्ट करने की बात कही। यूपी के श्रावस्ती जिले पहुंचे अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नफरत का माहौल बनाकर जीत हासिल करना चाहती। उन्होंने कहा कि साल 2017 में यूपी में बीजेपी ने कुछ ऐसी ही करके जीत हासिल की थी। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग बच्ची की लाश मिली है। आरोप है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। केरल के डीजीपी लोकनाथ बेहेड़ा ने सोमवार को प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में प्रार्थना की। उन्होंने इस दौरान मंदिर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। बेंगलुरु में पुलिस ने हनी ट्रैप के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने कई बेहतरीन सुविधाओं से लैस बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की है। डीआरडीओ की बनाई इस बाइक एम्बुलेंस के जरिए नक्सली इलाकों में घायल होने वाले जवानों को जल्दी अस्पताल भेजा जा सकेगा। इसमें ड्राइवर के पीछे एक आरामदायक सीट लगाई गई है जिसमें घायल या बीमार शख्स अच्छे से बैठ सकता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 युवा पशुपालकों ने गोबर बेचकर 5 महीने में 1,00,000 रुपए कमा लिए। ये दोनों हर रोज 3 से 4 क्विंटल गोबर बेचते हैं। अब इलाके के अन्य गोपालकों ने गोबर बेचना शुरू किया। कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि गोधन न्याय योजना के तहत दंतेवाड़ा के गोपालकों को अच्छा लाभ मिल रहा है। 10वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। यह चैंपियनशिप गुलमर्ग में आयोजित की गई। 22 जनवरी तक मुकाबला चलेगा। आईटीबीपी सेंट्रल आइस हॉकी टीम अपनी शुरुआती दोनों मैच में विजेता रही। रूस के प्रमुख विपक्षी नेता और पुतिन के मुखर आलोचक एलेक्सी नवेलनी की गिरफ्तारी पर रूस में आम लोग उनसे संवेदना जता रहे हैं। वहीं जिस पुलिस स्टेशन में नवेलनी को रखा गया है वहां ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है और ना ही उनके वकील को उनसे मिलने दिया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में सैमसंग कंपनी के प्रमुख को 2.5 साल की सजा सुनाई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। ली को 2016 में हुए एक भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई। 2016 में हुए उस घोटाले में उस समय देश के राष्ट्रपति को हटना पड़ा था।